ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 आज हम श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंध और द्वितीय स्कंद अध्याय आठवां श्लोक संख्या 27 सुत उवाच सह उपामंत्रित राज्ञा कथायां इति सत्पतेः ब्रह्मरात भृशं प्रीतः विष्णुराटेन संसदि सुत उवाच स उपामन्त्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पते ब्रह्मरातो भृशं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि सुत उवाच स उपामन्त्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पतेः ब्रह्मरातो भृशं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि सुत उवाच स उपामन्त्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पतेः ब्रह्मरातो भृशं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि सुत उवाच। श्रील सुत गोस्वामी ने कहा सह वह सुखदेव गोस्वामी उपामंत्रित इस प्रकार पूछे जाने पर राजा द्वारा कथायाम कथाओं में इसी इति इस प्रकार सत्पते है सर्वोच्च सत्य की ब्रह्मरात सुखदेव गोस्वामी भृशं अत्यधिक प्रीतः प्रसन्न विष्णुरातेन महाराज परीक्षित द्वारा संसदी सभा में। अनुवाद तात्पर्य श्री श्रीमदेशी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। सुत गोस्वामी ने कहा महाराज परीक्षित द्वारा भक्तों से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथा कहने के लिए आमंत्रित किए जाने पर सुखदेव गोस्वामी अत्यधिक प्रसन्न हुए। फिर से दोहराई सुत गोस्वामी ने कहा महाराज परीक्षित द्वारा भक्तों से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथाएं कहने के लिए आमंत्रित किए जाने पर सुखदेव गोस्वामी अत्यधिक प्रसन्न हुए। नियमानुसार भागवत की चर्चा केवल भगवत भक्तों के बीच ही की जा सकती है। जिस प्रकार भगवत गीता की आधिकारिक व्याख्या श्री कृष्ण तथा अर्जुन क्रमशः भगवान तथा भक्त के बीच हुई, इस प्रकार श्रीमद् भागवत जो भगवत गीता का स्नातकोत्तर अध्ययन है इसकी व्याख्या सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित जैसे विद्वानों तथा भक्तों के बीच ही हो सकती है। अन्यथा अमृत का वास्तविक स्वाद नहीं चखा जा सकता। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से प्रसन्न थे क्योंकि वे भगवान की कथाएं सुनने से तनिक भी नहीं उबे थे, अपितु वे उन्हें रुचिपूर्वक अधिकाधिक सुनना चाह रहे थे। मूर्ख व्याख्याकार वृथा ही भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत में अपना हाथ लगाते हैं, जबकि इन विषयों तक उनकी पेठ नहीं है। अभक्तों को इन दोनों सर्वश्रेष्ठ वैदिक ग्रंथों में दखल देने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। अतः शंकराचार्य ने श्रीमद् भागवत का भाष्य करने में हाथ नहीं लगाया। श्रीपाद शंकराचार्य ने अपने भगवद गीता के भाष्य में श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया, किंतु बाद में उन्होंने निर्विशेषवादी दृष्टि से टीका की है। किंतु अपनी स्थिति से अवगत हुए होते उन्होंने श्रीमद् भागवत की टीका नहीं की। श्री सुखदेव गोस्वामी को श्री कृष्ण का प्रथम प्राप्त था, देखे ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी ऐसा कहा गया कि सुखदेव गोस्वामी को श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा कि वो कभी माया के सकंज में आएगा नहीं, क्योंकि वो अपने माता के गर्भ से निकलना नहीं चाहते थे माया में फंसने के लिए। वो पहले से ही ब्रह्मवादी थे। हम आगे देखेंगे। इसलिए उन्हें ब्रह्मरात कहा गया है। श्रीमान परीक्षित महाराज को विष्णुरात कहा जाता है क्योंकि उन्हें भगवान विष्णु द्वारा संरक्षण प्राप्त था। वो माता उत्तरा के गर्भ में थे, ब्रह्मास्त्र जो अश्वत्थामा ने छोड़ा उससे जले थे, जल भी गए थे, यानी कि शरीर नष्ट हो रहा था, लेकिन वो अपने माता के गर्भ में ही थे। उन्होंने देखा कि अंगुष्ठ मात्र स्वरूप धारण करके भगवान चतुर्भुज अपनी गदा द्वारा वो ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार करके उसे निरस्त कर रहे हैं। तो यानी कि भगवान विष्णु द्वारा उनको माता के गर्भ में ही सुरक्षा की प्रतिज्ञा या सुरक्षा का निश्चय से प्राप्त हुआ था, इसीलिए वो विष्णुराज कहलाते हैं। सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मराज कहलाते हैं क्योंकि वो ब्रह्मवादी थे। ब्रह्मवादी यानी कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना, और भगवान ने शब्द ब्रह्म द्वारा ही उनको समझा लिया था कि भैया तू तो पहले से ही निर्लिप्त है, इसलिए तुझे माया नहीं छुएगी। लेकिन जैसे ये उनको आश्वासन मिला और बाहर निकले 12 साल के बाद, जब आश्वासन मिला और 12 साल बीत चुके थे और निकले माता के गर्भ में, क्योंकि व्यास देव को उनको अपना शिष्य बनाना था, लेकिन जैसे निकले वो भागने लगे, व्यास देव को पीछा पकड़ना पड़ा। तो ब्रह्मवादी शब्द ब्रह्मन द्वारा प्रशिक्षित होते हैं और अनुभूति करते हैं परम सत्य की, लेकिन आंशिक होती है। भगवान के विशुद्ध स्वरूप का वर्णन जब व्यासदेव के मुख से सुना जाता है तब वो रुक गए, नहीं तो भागते फिरते थे। और उन्होंने कहा, पिताजी और बताओ, और बताओ, भगवान विष्णु की कथा, भगवान श्री कृष्ण की कथा इतनी आकर्षक और मोहक होती है, और अभक्त भी खिंचाते हैं। प्रथा होती है, वहां चोर भी होते हैं, अपना माल सामान इकट्ठा करने के लिए आते हैं, दूसरों का माल सामान इकट्ठा करना, लेकिन उनके बीच में कथा का आयोजन करना सफलता नहीं, क्योंकि ये तो बड़ी प्रसन्न होने के लिए, रसास्वाद चखने के लिए जो भगवत भक्त उसमें समझ पाते हैं उन्हीं का ही विषय है। तो विष्णु रात विष्णु द्वारा सुरक्षित, वो ब्रह्म ज्ञान द्वारा सुरक्षित, इसलिए ब्रह्मराट कहलाते हैं, ये विष्णुराट कहलाते हैं। भगवत भक्त के रूप में भगवान द्वारा सदैव सुरक्षित रहते हैं। इस संबंध में यह स्पष्ट है कि विष्णुराट को और किसी से न सुनकर ब्रह्मराट से ही श्रीमद् भागवत सुननी चाहिए, क्योंकि अन्य लोग दिव्य ज्ञान को ठीक से प्रस्तुत नहीं करते और इस तरह मूल्यवान समय को नष्ट नहीं करते। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजन श्लाघया चक्षुर्मीलितं चेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं भुजेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुतवाच स उपामंत्रितो राज्ञा कथायाम इति सत्पतेः ब्रह्मरातो वृषं प्रीतो विष्णुरातेन संसदी। सुत गोस्वामी ने कहा महाराज परीक्षित द्वारा भक्तों से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथाएं कहने के लिए आमंत्रित किए जाने पर सुखदेव गोस्वामी अत्यधिक प्रसन्न हुए। ये प्रसन्नता सुखदेव गोस्वामी जो पा रहे हैं वो उसका बहुमान करने से नहीं है। ज्यादातर बहुमान करते लोग फूले जाते हैं, यदि किसी का बहुमान करते हैं तो उनको बहुत गर्व की भावना होती है। बहुमान सबको वैसे प्यारा लगता है, लेकिन प्यारा लगता है कहां से? कोई अर्थपूर्ण बोलता है तो दिमाग में प्यारा लगता है, किसी का बोलने से उसकी मन की इच्छा पूर्ण होती है तो मन से प्यारा लगता है, किसी को देह बुद्धि की आसक्ति है और देह बुद्धि के अनुसार उसको कुछ तोहफा दिया जाता है तो उसे प्रसन्नता आती है। लेकिन यहां जो विषय की चर्चा है वो तो आध्यात्मिक है, तो आध्यात्मिक रीति से प्रसन्नता कौन पाता है? तो ये ब्रह्मरात और विष्णुरात दोनों की लायकात है परम सत्य के बारे में जानने की। और ये जो ऋषियां इकट्ठे हुए हैं ये सभी भक्त हैं, वहां जो उपस्थित हुए सभी भक्त हैं, यानी कि ये पहुंचे हुए भक्त हैं, सामान्य भक्त नहीं है। तो श्रीमद् भागवत की कथा में सत्य का प्रतिपादन होता ही, परम सत्य का प्रतिपादन होता है, और वो सुनने के लिए हम परम सत्य जो उनकी अभिव्यक्ति तीन प्रकार से होती है, तो आंशिक अनुभूति ब्रह्म परमात्मा में होती है, लेकिन पूर्णानुभूति तो भक्त को ही होती है भगवान के विषय में। तो सत्य और यहां सतपते है, सतपते यानी कि परम सत्य। तो प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद में ही उसकी स्पष्टता कर देते हैं और भागवत की कथा करने कराने के लिए नियम लायकत बना देते हैं, अधिकारत्व बना देते हैं। आप देखोगे कि सर्वप्रथम अध्याय में ही उसकी पुष्टि करते हैं, प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय, इसमें ये लायकत की पुष्टि करते हैं। कहते हैं कि भागवत की कथा स्नातकोत्तर है, स्नातक यानी ग्रेजुएट है, उसे आगे कोई बढ़ना चाहता है। हम हाई स्कूल पसार करते हैं, बाद में स्नातक का कोर्स आता है, तो भगवत गीता सर्वप्रथम अध्यात्म की शिक्षा का पहला सोपान है, वो तो उत्तीर्ण करना ही होता है, वहां सत और असत का परिचय ही करते हैं, सत और असत का परिचय करते हैं। सारी दुनिया असत से बनी है, लेकिन आत्मा भगवान का अंश होने के कारण सत, और वो हम है, हमारा सच्चा स्वरूप है, इसलिए हमें उसका प्राधान्यता वाला जीवन जीने की इच्छा करनी चाहिए। भौतिक जीवन से निवृत्ति की बात बताते हैं, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति लाने के लिए सत का परिचय सर्वप्रथम आवश्यक है। उसमें उत्तीर्ण होते ही हमें स्नातकोत्तर, जो श्रीमद् भागवत का ये विषय है, जो भक्तों के बीच में ही चर्चा होती है, यहां भगवान स्वयं नहीं कहते, प्राथमिक शिक्षा भगवान कहते हैं, और ये स्नातकोत्तर शिक्षा भक्त लोग करते हैं। और भक्त लोग कैसे, ना कि तिलक गले माला वाले भक्त, विष्णु का भक्त भवे दैवम आसुरेच्चर विपर्य, यानी कि आसुरी भाव जब तक हम, यानी कि ईर्षालु भाव हम दूर नहीं करते, तब तक हम भक्त बनने की स्वप्न ही देखते हैं। भगवान के प्रति ईर्षा भाव या भक्तों के प्रति ईर्षा भाव, कम से कम हमें माध्यमिक अधिकारियों के तरह में आना चाहिए, क्योंकि ये परम सत्य का जो प्रतिपादन श्रीमद् भागवत में पहले हुआ है, उसका स्पष्ट रूप से हमें स्वीकार करना पड़ता है। वो यदि स्वीकार करने की इच्छा ही नहीं है, तो हम भगवान की कथाओं का जो रस है उसका स्वाद नहीं चखेंगे। इसीलिए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में ही परम सत्य की अनुभूति करने वाले की तीन श्रेणियां बनाई हैं। वदन्ति तत्व विदस्तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द दे। परम सत्य के जो जानकार हैं, तत्व भी वदन्ति क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं कि जो ब्रह्म परमात्मा और भगवान, ये तीनों द्वारा परम सत्य की अनुभूति होती है, लेकिन ब्रह्म यानी कि निर्गुण ब्रह्म वो आंशिक अनुभूति कराता है। परमात्मा जो योगियों का ज्ञान वो भी आंशिक अनुभूति कराता है, लेकिन भक्त जब भगवान की अनुभूति कराने वाला विषय, भगवान के परम सत्य के व्यक्तित्व की पहचान कराने वाला है, वो पूर्ण अनुभूति। यानी कि जब तक भगवान के पूर्ण व्यक्तित्व को स्वीकारते नहीं, ब्रह्मवादी रहते हैं या परमात्मवादी रहते हैं, तो हमें ये श्रीमद् भागवत की कथा का जो रस का आस्वाद मिलने की कोई संभावना नहीं। रसाभास हो सकता है, रसो आ रहे हैं इसका आभास हो सकता है, लेकिन विशुद्ध रस नहीं मिलेगा। विशुद्ध रस के लिए भागवत में ही भागवत की पुष्टि हुई है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखा द्रव्य अमृतम संयुतम श्रीमद भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमिक भाव का रसिक। यानी कि जो रसास्वाद करने वाले हैं वो उत्तम अधिकारी होते हैं, मध्यम अधिकारी जरा छिटके पड़ते हैं वो चख लेते हैं, लेकिन लोलुप रहते हैं, तभी ही वो उत्तम अधिकारी के रूप में आएंगे, नहीं तो नहीं। क्योंकि श्रीमद् भागवतम निगम कल्प तरो वेद, निगम यानी वेद कल्प तरु के समान है। निगम कल्प तरो गलितम फलम, गलितम यानी परिपक्व, रसों से भरा हुआ, पक्व कच्चा नहीं। कोई भी सारे वेदों में देखोगे तो कोई भी ऐसा फल, वेदों के तो बहुत फल होते हैं जिनको जो चाहिए ले ले, लेकिन सभी फल की दशा परिपक्व दशा नहीं होती। जो फल परिपक्व है और परिपक्व फल दिखने में भी बहुत समांतर होते हैं, लेकिन ये तो कैसा परिपक्व फल, शुक मुकाद, ये तोते की चोंच जब लगती है, यानी किसी ने चखा है और तोता उड़ गया, लेकिन वो जहां तोते ने काटा है परिपक्व, वहां से तो रस बह रहा है। गलितम फलम सुख मुखात द्रव अमृत संयुतम, द्रव यानी कि द्रवित होना, प्रवाहित होना, वो निकल रहा है। सुखदेव गोस्वामी ने ये श्रीमद् भागवत के विषय में ऐसी चोंच मारी है और रसों का बहाना शुरू करवा दिया। व्यासदेव ने तो सिर्फ संकलित किया और वो भी विष्णु पुराण इत्यादि जो सात्विक पुराण है ना, उसमें से सारी कथाएं इकट्ठे करके श्रीमद् भागवत में फिर से लिखी है, लेकिन ये सुखदेव गोस्वामी ने जब जिस ढंग से, जो ब्रह्मराज हैं, परम सत्य के जानकार हैं, जब निर्गुण तत्ववादी परम सत्य के जानकारी के लिए भगवान की शरण आते हैं, तब वो महात्मा कहलाते हैं। वो भगवान ने भगवद गीता में भी कहा है ना, बहुनाम जन्मना हंते ज्ञानवाम माम प्रपत्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है। तो ये ब्रह्मवादी सामान्यतः क्या जानते हैं, वो तो ज्ञान का प्रकाश समझते हैं, व्यक्तित्व की ईर्ष्या करते हैं, भगवान के व्यक्तित्व की ईर्ष्या, उनका ज्ञान स्वीकारते हैं लेकिन भगवान के व्यक्तित्व को नकारते हैं। आप बोलते रहो लेकिन हम आपकी कोई सेवा नहीं करेंगे, आपसे सेवा ले लेंगे, बोलो 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 बोलो, हाँ बहुत आनंद आता है कहेंगे, अरे आज क्या आनंद आया कथा में, लेकिन वो ब्रह्मवादी बोल रहा है या कोई अपने दिमाग को कोई थोड़ी सी प्रसन्नता प्राप्त कराने वाला बोल रहा है, अपने अहंकार अपने हम बड़े यजमान बने हैं कथा में, इसलिए तोपाक जो पहनाया इसलिए आनंद आता है। कौन सा कितने स्तरों पे आनंद होता है, दैहिक भाव, मानसिक भाव, बौद्धिक भाव, लेकिन आत्मिक भाव से आनंद। आत्मा का मूल स्वभाव भगवान की ये कथा का रसपान करना, भवंती रद कर्ण रसायण कथा, ये परम सत्य की पूर्णानुभूति। जब भगवान के व्यक्तित्व की सेवा, भगवान के वचनों की सेवा और भगवान के ज्ञान की जो अनुभूति होती है, वो परम सत्य की भी सर्व प्रकार से सेवा करना, ये भक्तों द्वारा ही होती है, दूसरों के द्वारा नहीं होती। दूसरों के द्वारा नहीं होती। यहां स्पष्टता करने के लिए शंकराचार्य का नाम देते हैं कि किस ढंग से उन्होंने भागवत का विषय छेड़ा ही नहीं। भगवत गीता पर शारीरिक भाष्य करके उन्होंने कमेंट्री लिखी है परम सत्य की। कहने का मतलब है कि वो ब्रह्मवादी थे लेकिन मायावादी भाष्य पर चले गए। ब्रह्मवाद यानी कि ये ब्रह्मवाद में छेड़छाड़ कर सकते हैं, भागवत के विषय में हम कभी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, विशुद्ध भक्ति के विषय में कभी छेड़छाड़ नहीं हो सकती। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा और प्रामाणिक रूप से जो चली आई है उसमें ही महत्ता है। देखो शंकराचार्य आदि शंकर भगवान शंकर ही थे, लेकिन नास्तिक धर्म को हटाने के लिए उन्होंने मायावाद नामक भ्रामक व्याख्या भगवद गीता पर दे दी। वहां भगवान को, कृष्ण भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन माया से अटपटे शब्द का प्रयोग करके दुनिया को भ्रमित करने का इनका इरादा है, क्योंकि उसके बहाने वो आस्तिक बन जाएंगे भगवान पर, नास्तिक होने से आस्तिक बन जाएंगे और भगवान की वैसे भी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। नहीं तो भगवान को स्वीकार करने के लिए बुद्ध भगवान का कितना पावरफुल अवतार था, कितना पावरफुल होता। आप भारत का तत्कालीन इतिहास देखें तो थोड़ा ही पोर्शन बाकी रहा था भारत वर्ष में कि जो बौद्ध नहीं थे, लेकिन इन लोगों को हटाकर भगवान के परम सत्य की मायावादी तो मायावादी भाष्य दाखिल करके हम भगवान की स्थापना करेंगे जो आगे आगे सुधरती जाएगी। इस ढंग से शंकराचार्य ने वो मेहनत की, तो वो सराहनीय इसीलिए है कि कम से कम नास्तिक धर्म को तो हटाए, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकारा है, अन्य किसी को नहीं स्वीकारा है। उसके बावजूद माया से भ्रमित है, लेकिन वो लोग माया की पुछड़ी पकड़ के ही तो भगवान को याद करते रहेंगे या भगवान की भावना बनाए रखेंगे, चाहे शुद्ध नहीं है फिर भी। वो रामानुज ने सुधार किया, रामानुज आए उसके, और कितना अंतर है, कितने सालों लगते हैं। देखो बुद्ध भगवान कम से कम 2000 साल पहले हो गए, सही ना, और ये शंकराचार्य करीबन 7वीं सदी की बात है, यानी कि कितने सालों तक नास्तिक धर्म रहा होगा। उसके बाद रामानुज आए, उसके बाद मध्वाचार्य, उन्होंने रामानुजाचार्य से भी और सुधार किए, आत्मा और परमात्मा दोनों की सनातन अवस्था बताई और सनातन धर्म की स्थापना वहां से होती है। जो उसके पूर्वज रामानुजाचार्य के अनुयायियों को भी स्वीकार करनी पड़ती है, सुधारवादी। लेकिन अध्यात्म की पूरी पूरी पहचान और भक्ति के विषयों का विशुद्ध वर्णन तो चैतन्य महाप्रभु ने ही मध्वाचार्य के बन किया। तो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा अस्खलित रूप से जो विशुद्ध ज्ञान भगवान के लिए विशुद्ध भक्ति द्वारा जब भी हमें प्राप्त होता है तो ये श्रीमद् भागवत की रस कथा, रसमयी कथा का स्वाद वही परंपरा में चले आकर ही हो सकती है। अपनी परंपरा में सुखदेव गोस्वामी आते हैं तो हम खाली पीली अन्य रसो या जो अपने संप्रदाय में नहीं है उन लोगों का सुनने के लिए क्यों इच्छुक है। सिद्धांत तो यही कि जब भागवतम का इतना विशद रूप से बहुमान करना, भागवत के असली कथाकारों को तो बहुत आनंद देता है क्योंकि वो आत्मिक दृष्टि से देखते हैं। तो इसलिए विष्णुराट ने ब्रह्मराट को आमंत्रित किया और ब्रह्मराट ने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया, अत्यधिक प्रसन्न हुए। प्रसन्नता में भी ज्यादा कम प्रसन्नता का प्रश्न होता है, या तो अत्यधिक अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त बहुत सूचक है, उसकी कोई कंपैरिजन नहीं। सुखदेव गोस्वामी परम सत्य परम ब्रह्म के उपासक बने, ब्रह्म के उपासक से परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के उपासक बने, नहीं तो वो भी अधूरे थे। जिन्होंने बोला वो व्यक्ति को ढूंढने के लिए घर की परवाह न करके, समाज की परवाह करके नंगे ही घूम रहे हैं। 12 साल का बड़ा लड़का होता है वो यदि नंगा घूमता है तो अभूत जन उनका उपहास भी करते हैं। 3-4 साल का लड़का यदि नंगा घूमता है तो कोई परवाह नहीं करता, लेकिन 12 साल का तो परवाह करता है, लेकिन उपेक्षा भी करेंगे, देखो ये पागल है। लेकिन ये तो ब्रह्मराट है, ब्रह्मराट सिर्फ ये उन्होंने जो अनुभूति की है परम सत्य के परम व्यक्तित्व की जो अनुभूति की है वो सुखदेव गोस्वामी को प्रसन्न कर देंगे। उनके पिता द्वारा भगवान के विशुद्ध चरित्र उन्होंने परम सत्य के माध्यम से समझा है और ये चरित्र की सराहना कितनी बड़े ढंग से करते हैं वो तो श्रीमद् भागवत का कृष्ण कथा ही बताएंगे, इनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो यहां सारे शब्द सतपते हैं यानी परम सत्य, सत्यों में भी पति, सत्य की 3 अभिव्यक्तियां बताई गई है जिसे ब्रह्म परमात्मा और भगवान कहते हैं। तो सतपते हैं यहां कि भगवान श्री कृष्ण, परमात्मा की भी चर्चा नहीं, ये तो इनका विस्तार है, कण कण में विस्तार है और ब्रह्म तो उसका प्रभाव ही है। लेकिन व्यक्तित्व जो होता है तो परम व्यक्तित्व का स्थान या प्रभाव दोनों की चर्चा अंदर आ जाती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का चरित्र विशुद्ध सतपति सतपते यानी कि परम सत्य का पूर्णानुभूति वाला विषय है, परम सत्य का पूर्णानुभूति वाला विषय है। आजकल वृंदावन में भी देखें तो बहुत सारे कथाकार हैं और सब रसमयी कथा करने का दावा करते हैं, रसमयी कथा करने का दावा करते हैं, लेकिन वो परंपरागत नहीं है, जुड़े ही नहीं है। तोता भी बोलता है, वो भी सुनने में अच्छा लगता है। तोता यदि बोलता है तो तोते को ही आकर्षित करेगा, सही? ऐसा आकर्षण सुखदेव गोस्वामी ने जब कथा की तब यहां कौन कौन उपस्थित है उसके माध्यम से ही देखा जाएगा। तो सामान्य मनुष्य बिना पूर्णानुभूति किए भगवान की कथा का चरित्र का गुणगान कैसे कर सकता है? यदि करने की चेष्टा करता है तो अनुकरणीय भी नहीं होती, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ पैसे का लाभ देते हैं, यानी कि कथा चरित्र और जो जिस ढंग से यहां कथा हुई उस ढंग से तो होने का संभावना भी नहीं। पुण्य कमाने के लिए ये कथा नहीं की जाती, सिर्फ मोक्ष के लिए भी, किसी के सद्गत आत्मा के मुक्ति के लिए भी कथा नहीं की जाती। भगवत धाम पहुंचाने के लिए ये कथा श्रवण करना चाहिए, क्योंकि धाम में जाकर ये कथा ही आपके सामने खड़ी हो जाएगी और आपका स्वरूप के अनुसार आपकी सेवा बन जाएगी। वहां से लौटने का कोई इरादा ही नहीं होता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धामम् परमम्। खुद का इरादा, लेकिन भगवान की इच्छा से आओ लेकिन वृंदावन बनाओ। प्रभुपाद जी इसी ढंग के परम व्यक्तित्व भक्तों में सर्वश्रेष्ठ, जिन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं की, उन्होंने इस ढंग का यथावत रूप से हमें भगवत कथा का श्रवण करने का निमंत्रण दे रहे हैं, फालतू ढंग से नहीं। ऐसी सराहना हमें कहीं नहीं मिलती, ऐसा तात्पर्य हमें कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी। कोई भी भागवत या उसका देखो सिर्फ अनुवाद करके लोग थक जाते हैं, अपनी आत्मानुभूति बहुत बहुत तो बताते हैं लेकिन फिर से वो अपना ही शास्त्र लिखते हैं। प्रभुपाद जी ने अपना शास्त्र लिखने की कोई चेष्टा नहीं की, बल्कि तात्पर्य लिखकर यथावत हम दें उसकी गारंटी। तो प्रभुपाद जी का ये जो स्टैंडर्ड है, जो अनायास ही सब प्रकार के लोगों को आकर्षित करता है, फिर भी आग्रह ये रखते हैं कि भागवत कथा श्रवण तो अधिकारत्व प्राप्त किए बिना होता ही नहीं। कोशिश इस ढंग से इस परंपरा को पकड़ के इसकी ही गरिमा बना के करनी चाहिए, अन्यथा नहीं। नहीं तो दूसरा तो पैसे का खेल, प्राधान्यता उसकी रहती है। कभी चला लेते हैं लेकिन उसमें हमें वास्तविक लाभ के लिए तो हमें प्रभुपाद जी के चरण कमल और मुखारविंद से जो निकला है उसको ही पकड़ना। तो इस श्लोक में किसी को कोई प्रश्न है? क्योंकि हम सनातन रूप से व्यक्ति हैं और भगवान भी व्यक्ति है। हम आपस आपस में आसानी से झगड़ा कर लेते हैं ईर्ष्या के कारण। ईर्ष्या होती है तभी तो झगड़ा होता है, यार विचार भेद होता है। तब भगवान के साथ विचार भेद क्यों नहीं कर सकते? लेकिन वो अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग, विचार भेद करना अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। परम सत्य के सामने तो कोई होता ही नहीं ऐसा दुरुपयोग। लेकिन हम व्यक्ति हैं और व्यक्ति हैं तो हम ईर्ष्या के कारण अपना स्वार्थ अपने निजी इच्छाओं के आधार पर बनाते हैं, जबकि हमारा सारा अस्तित्व भगवान के आधार पर होता है, भगवान की शरणागत होकर ही होता है, भगवान द्वारा प्रदत्त किए गए आध्यात्मिक या भौतिक दोनों क्षेत्र में आश्रित रहकर ही होता है। सनातन अस्तित्व आत्मा का बना रहता है लेकिन अज्ञानता में पड़ा रहना हमारा अनादिकाल से स्वभाव बना है, जन्म मरणों इसलिए हमें प्राप्त होता है। इनसे इनके चक्कर से तो पहले छूटे, बाद में कारण जानने की बात करें। प्रभुपाद जी कहते हैं जब भवसागर में गोता खा रहा है, डूबने की तैयारी कर रहा है, उसके मन में ये विचार आता है कि मैं कैसे गिरा, मैं कहां से गिरा, मैं क्यों गिरा। अरे वे गिरा है तो पहले कोई भी हाथ में साधन ले ले, ढूंढ कहां है साधन, गिरा तो है ही। पहले यह सोचना चाहिए, बल्कि हम उल्टा क्यों सोचते हैं, या जो सोचना नहीं चाहिए उसकी प्राधान्यता क्यों नहीं चाहिए। आप भगवत धाम से गिरे लेकिन कैसे, प्रभुपाद जी के हम थे, हम इनके अंश हैं और आत्मा को वैसे भी कुछ करना नहीं होता तो क्या गलती की है? सोचने की गलती की है, इच्छा की गलती की है। इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद मोहे न भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे अंति परन्तप, ये काफी है। इस पर भी बहुत विशुद्ध रूप से अपनी परंपरा में भक्ति विनोद ठाकुर ने इत्यादि ने सबने बताया, ये संसार तो स्वप्नवत बताया। जब आंख खुलती है तो भगवान का तादात्म्यता प्राप्त होती है, लेकिन वो कितनी टिकती है, टिकाने के लिए हम क्या मेहनत कर रहे हैं। सोलह माला का जप और चार नियमों का पालन भी ठीक ढंग से नहीं करते तो कितनी जड़ता होगी हमारे में। एक विशुद्ध नाम लेने के लिए हमें क्या क्या नहीं करना, लेकिन लिपा का है क्या? फिर भी ये आभास वाला नाम भी मुक्त करा सकता है। तो ये जो आत्मा की आत्यंतक अवस्था जो भगवान के विशुद्ध व्यक्तित्व पर इनके साथ लीला में प्रवेश करने का जब मौका मिलता है तो उसके लिए तो अनन्य भक्ति की ही बात बताते हैं। भक्त्या तु अनन्यया शक्या अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। सुखदेव गोस्वामी तत्त्वेन प्रवेष्टुं हो गए थे, प्रवेष्टुं में प्रवेश करना कहां, भगवत धाम के वातावरण, वो वातावरण ले जा सकते हैं। प्रभुपाद जी ऐसा विशुद्ध वातावरण वृंदावन का लेकर आए थे अमेरिका, और इसीलिए वही वातावरण में देह छोड़ना चाहते, जहां गए वहां वो वातावरण इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन किसने कितना बचाया। प्रभुपाद जी की उपस्थिति में अभूत जन भी सुखदेव गोस्वामी के प्रति जितना आकर्षित होने वाले थे ऐसे गए हैं, ऐसा उनका परम पवित्र व्यक्तित्व है। इसीलिए ही उनको भगवान की शक्ति का ये अवतार मानते हैं, शक्ति आवेश आवेश होकर, और इतना बड़ा तगड़ा लिखते हैं, भगवान की शक्ति का परिचय करवाते हैं पूर्ण रूप से, उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं। इसलिए 10,000 साल तक इसकी कोई बराबरी करने वाला कोई पुस्तक नहीं होगा। जब हम अपनी आकांक्षाएं का त्याग करते हैं, अन्य इच्छाओं अन्याभिलाषिता शून्यम बनाते हैं, ज्ञान कर्माद अनावृतम, बहुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं रखते हैं, कर्मों की कुशलता की भी आवश्यकता नहीं रखते हैं, भक्त लोग इसलिए मैनेजमेंट कर ही नहीं पाते, क्योंकि कर्मों की कुशलता के बजाय उनके हमारी भक्ति चली जाएगी, मारो गोली यार, जो होना है तो होने दो, लेकिन अपनी भक्ति बचाने के लिए पड़े रहते हैं। विरोधाभासी दुनिया तो है ही, शरीर भी विरोधाभासी है, कहां विरोध नहीं है, आत्मा का तो ये शरीर विरोध कर ही रहा है, इसलिए हमें उल्टा समझाना है कि मैं शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं। आत्मा होते हुए हम आत्मा का अनादर करते हैं, क्योंकि परमात्मा से पहले अनादर हुआ है, इसलिए परमात्मा की ये भगवान की जो सारी सृष्टि है उसमें भी हम उल्टा व्यवहार करते हैं, उनसे शिक्षा प्राप्त करनी है बल्कि हम उसका उपभोग करना चाहते हैं। देती है शिक्षा और हम समझ रहे हैं कि हम एंजॉय करें, जहां तक ये विरोधाभास मिटता नहीं। विरोधाभास ईर्ष्या के कारण है, मूल सर्वप्रथम ईर्ष्या भगवान के साथ की है, वहां मिटा। इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। अर्जुन मैं तुझे मेरा व्यक्तित्व का, मेरी भक्ति का विशुद्ध ज्ञान जो अति गुह्य ज्ञान है, मैं तुझे कहता हूं कि तू मेरा ईर्ष्यालु नहीं है। ये ईर्ष्या सामान्य नहीं, चलो हम कह देते भैया आपस आपस में ईर्ष्या मत करो, तो कहो बौद्धिक दृष्टि से समझे हाँ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मन में तो बहुत होती है, देह में देह के आकर्षण में भी बहुत ईर्ष्या आ जाती है, देखो मेरे से ज्यादा स्टाइल मार रहा है, मेरी कॉपी केट कर रहा है, मेरा ये मैंने ये किया था उसने देखो मेरा हड़प कर दिया, ईर्ष्या। तो मूल ईर्ष्या खत्म करते ही ये सारी ईर्ष्या खत्म होती है, तो भगवान के साथ ईर्ष्या तो बंद करें, नहीं तो हम एक दूसरे के साथ ईर्ष्या बंद करने का जितना प्रयत्न सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी और भगवान बाकी के बाकी रह जाए, यानी कि हम जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं, यानी कि भौतिक गुणों में सत्व गुण भी लाकर हम कहेंगे कि चलो भैया आप एक दूसरे से ईर्ष्या मत करो, तो कितना लाभ होगा। अरे भाई भगवान के साथ ही ईर्षा छोड़ दो, जैसे अर्जुन की लायका थी, तभी तो भगवान जो कहते हैं के लिए करने के लिए तैयार हो गया। अति गुह्यतम ज्ञान उसे ही प्राप्त हुआ, क्योंकि भगवान ईर्षा रहित व्यक्ति को अधिकार देते हैं। जो भगवान के साथ अति गहरी ईर्षा करके बैठा है जो आत्मा, तो वह आत्मा अपना विस्तार शरीर द्वारा करता है, बुद्धि द्वारा, मन द्वारा विस्तार आवरण बनाता रहता है, तो उनकी ईर्षा कितनी फैली हुई है। जो अपना फैलावा करना चाहता है तो उसकी ईर्षा कितनी फैली हुई। आत्मा तो इस शरीर में छोटा सा अंश है, उसकी कोई गणना भी नहीं, फिर भी उसने इस अपना विस्तार करके ही तो ये सारे शरीर पर अधिकार जमाया है। आत्मा के लिए एक कोशी जीव बनना भी आवश्यक था, लेकिन आत्मा का पूर्ण मूल शरीर तो भगवान जैसा है, भगवान की प्रतिकृति बताई। तो हम समझ सकते हैं कि आत्मा का कैसा स्वरूप हो सकता है। अनुभूति करना पहले समझ आनी चाहिए, बाद में अनुभूति होती है, ये अनुभूति को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान यानी सिर्फ इंफॉर्मेशन को ज्ञान थोड़े कहते हैं। और ये अनुभूति टिकाने के लिए ही तो हमें हरि नाम करना पड़ता है, भगवान का आध्यात्मिक वातावरण या शब्द ब्रह्मन का आश्रय लेना पड़ता है। तो सर्वप्रथम हमें ये सोचना चाहिए कि जो भगवान जो कहते हैं वो सही है। प्रभुपाद कहते हैं कि एक समय था जब हम उनके साथ थे, लेकिन ये स्वप्न अवस्था जैसी हमारी ईर्षा ने सब कुछ बना दिया है। जैसे स्वप्न टूट जाता है तो व्यक्ति अपनी मूल स्थिति प्राप्त करने का अनुभव तो करता है, तो ये आत्मा को ऐसी स्वप्न अवस्था में लाने वाली ईर्षा है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत, मोह द्वारा भी स्वप्न आते हैं, मोहित होता है तो उसे भी स्वप्नवत जैसा लगता है। ये अज्ञानता भी अपना कैसा कैसा प्रभाव बताती है। अज्ञानता को असत कहते हैं, अज्ञानता को ही मृत्यु कहते हैं, असत तमस और मृत्यु, ये तीनों अज्ञानता का विस्तार है। अज्ञानता का विस्तार। कृष्ण भूली गेला जी भगवान छा करे, माया तारे पास तेरे चापटी है। भूलने की इच्छा जब करता है, वैसे तो भगवान को भूलना भी मुश्किल है, लेकिन जब भूलता है तो भगवान को याद करना भी मुश्किल है। सही, हम जो स्थिति में हैं वहां से तो निकले, भगवान नहीं क्यों नहीं कहते हैं? अरे तुम मुझे भूलना चाहता तो बुलावा भी मेरे से ही आता, मैं भुला सकता हूं तुझे, तू तो अपने आप भूल नहीं पाता, लेकिन तेरी इच्छा है इसलिए मैं देता हूं। तेरी इच्छा मुझे याद करनी है, मुझे ही प्राप्त करना है, तो बाकी सबको भूल, उसके लिए तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। हम अपने हिसाब से ये समझते हैं कि भैया इतनी छोटी सी गलती का इतना बड़ा दंड, इतनी बड़ी शिक्षा, क्योंकि तुम छोटे हो इसलिए ये सब बड़ा लगता है, लेकिन भगवान की नजर में, भगवान का तादात्म्य प्राप्त करने की शक्ति आप में है, क्योंकि हम इनके अंश हैं, इसलिए है आत्मा सच्चिदानंद है, इसलिए है। तो चित्त शक्ति का उपयोग ठीक ढंग से करो। चित्त शक्ति का उपयोग सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए क्यों करें? जो प्रवृत्तियां भगवान को बुलावे में ज्यादा मदद कर रही है, इन प्रवृत्ति का तो त्याग ही करना है, उसे अनर्थ कहते हैं। अनर्थ से निवृत्ति करनी होती है। कर्जा करके कोई सुखी नहीं होता। तेरे भगवान के प्रति हमने कितना कर्जा किया तो सुखी कैसे बनेंगे? कल बताया था गृहस्थ जीवन में भगवान को देना है, क्योंकि कर्जा इनके, इनकी चीज उधार लेकर हमने जिए, इनकी शक्ति द्वारा हम तो अपनी शक्ति के नगण्य है ही कहां। उधार लेकर हम अपनी इच्छाएं पूर्ण करते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं देते, उनको तो ब्याज सहित देनी चाहिए और चक्रवर्ती ब्याज देते ही नहीं ना। भगवान कहते हैं तू जो कुछ करे, जो कुछ खाए, जो कुछ यज्ञ में आहुति दे, जो कुछ दान करे, जो कुछ तपस्या करे, वो तो मुझे अर्पण करके चल। लेकिन अर्पण करना यानी कि चलो दे दिया, अर्पण किया है क्या? मनसा वाचा कर्मणा तीनों द्वारा अर्पण करना होता है, तभी आत्मा अर्पण कर सकती है, नहीं तो नहीं। आत्मा अपनी अभिव्यक्ति मनसा वाचा और कर्मणा तीनों द्वारा करता है, तो तीनों द्वारा करना चाहिए। और एक एक चीज यत करोषि जो कुछ करे, यदश्नाशि जो कुछ खाए, आत्मा द्वारा अर्पण करना। अर्पण कौन कर सकता है या अपने पास है उसको कौन दे सकता है दूसरों के लिए? जिसमें ईर्ष्या वो दे सकता है, लेकिन ईर्ष्या नहीं है फिर भी अपना अहंकार को पोषने के लिए या अपने संतोष के लिए, अपने गुणों के प्रभाव के अनुसार अपनी वाहवाह बनाने के लिए यदि कोई अपना तो क्या वो अर्पण के बदले बिजनेस करते हैं? ऐसा लगता है कि मैं यदि इतना दान दूं तो मेरी इतनी वाहवाह होगी, मेरे समाज में मेरा इतना गर्व, मेरा इतना अभिवादन, इतना तो होना ही चाहिए, वो स्टैंडर्ड बना देते हैं। इतना इतना तो करना ही पड़ेगा तभी हम आएंगे। अरे भाई, इन ऑफिशियल इनविटेशन देना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं। तो इन चीजें सारी भक्ति में बाधक हैं, अनर्थ बताते हैं, क्योंकि इसमें अर्पण पद करने की भावना नहीं। फिर भी स्वीकारते हैं तो उतनी ही प्रमाण में शुद्धि होती है, लेकिन उसकी आंतरिक शुद्धि के लिए तो, यानी कि मानसिक बौद्धिक शुद्धि के लिए तो और प्रयत्न करें। उसे ज्ञान द्वारा ही शुद्ध होता है, आध्यात्मिक ज्ञान का परिचय होते ही वो शुद्ध हो सकता है। तो बाहर दिखावा का दिखावा रहता है। आत्मा व्यक्ति होने के कारण अपनी इच्छा कभी भी प्रकट कर सकता है, चाहे मुक्तावस्था में भी क्यों ना हो। चाहे भगवान के पास भी क्यों ना। भगवान की सर्वोपरिता वाली सृष्टि में आत्मा को आश्रित रहकर ही रहना होता है, वो बराबरी करने की चेष्टा ना करे। लेकिन गुणवत्ता समान है ना, इसलिए मिथ्या अहंकार भी आ जाएगा। गोपियों ने कुछ छोड़ा नहीं देने में, कुछ भी नहीं छोड़ा, इसलिए सर्वोपरि भक्त की श्रेणी में है। छोड़ने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रखना, सब कुछ। विशुद्ध भक्त के चरित्र में बलि महाराज ने समझा के मैं हूं शरीर हूं, भगवान ने कहा कि तीसरा कदम कहां रखो, तो वो उसकी बुद्धि स्वयं की नहीं चली। तो प्रहलाद महाराज सामने थे ना, उसने इशारा कर दिया खोपड़ी दे दे तेरी, अपने आप को क्या समझ रहा है, मत्था दे। तब बलि महाराज समझे और विशुद्ध भक्त बन गए, महाजन बन गए। ये सारे भक्तों की आप श्रीमद् भागवत में ही तो कथा आती है, क्योंकि भक्तों का चरित्र भक्त ही सुनाते हैं, उसके आधार पर भगवान कौन है पता चल जाता है, कैसे हैं वो पता चल जाता है, क्यों है वो भी पता चल जाता है। और हम अपनी मूल अवस्था प्राप्त कर सकते हैं इनके साथ। महाजनो ये न गतस्य पद्मा। और कोई प्रश्न है? जय जगदीश्वर प्रभुपाद की।